प्रिय भक्तजन, भाइयों बहनों एवं बच्चों, आज 13 अगस्त 2020 का शुभ दिन आपके लिए मंगलमय हो। और पिछले 2 दिन जो आपने स्वाध्याय किया वो भगवान श्री कृष्ण जी के अवतार के विषय में था, जिसमें आपने बहुत कुछ जाना कि जब भगवान इस धरती पे आते हैं परमेश्वर परमात्मा, तो मनुष्य का शरीर धारण करके जब आते हैं तो मनुष्य जैसी कर्म करते हैं, मनुष्य जैसी लीला करते हैं, और बहुत कम लोग समझ पाते हैं ये भगवान का अवतार है। लेकिन वो ऐसे जीतते हैं, क्यों जीतते हैं? वो इसलिए जीतते हैं कि मनुष्य भी वैसे ही जीने का आदर्श प्राप्त करे। नहीं देखेंगे, अवतार तो बहुत ऊंचे शासन पर बैठता है, अवतार तो ये करता है, अवतार तो वो, हम भी वही करेंगे। तो भगवान ऐसे काम करते हैं जो कि मनुष्य के लिए आवश्यक है, जैसे साधु पुरुषों की रक्षा करना, और जो कृष्ण कर्म करते हैं उनको सजा देना, धर्म की स्थापना करना। तो इस प्रकार से हमें एक शिक्षा मिलती है और शिक्षा से हमारा जीवन शुद्ध होता है। आज मैं 8वां अध्याय अर्जुन उवाच, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अरि भूतम च किम प्रोक्तम अरि देव की उच्यते अभि यज्ञ कथम को देह अस्मिन् मधुसूदन ज्ञान काले च कथम गुयोसी नीताप मभी। अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अद्भुत किसको कहा गया है, अधिदैव किसको कहा गया है, यहाँ अधियज्ञ कौन है, और वैसे देव कैसे है। हे मधुसूदन, वशीभूत अंतःकरण वाले मनुष्यों के द्वारा अंत काल में आप कैसे जानने में आते हैं। तो यहाँ अर्जुन प्रश्न करते हैं और भगवान उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाच, अक्षम बम तम स्वाध्याय अध्यात्म उच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गा कर्म संगीता। श्री भगवान बोले, परम अक्षर ब्रह्म है, जो कभी अक्षर होता, जो अक्षर ना हो, जिसका नाश ना हो, वो उसको कहते हैं अक्षर, और वो क्या है, वो ब्रह्म। और परा प्रकृति क्या है, जीव हम लोग, और इसी को क्या कहते हैं, अध्यात्म। ब्रह्म और जीव की एकता जो है ये अध्यात्म है। प्राणियों की सत्ता को प्रकट करने वाला त्याग कर्म कहा जाता है। कर्म क्या है, त्याग। अधिभूतम क्षरोभाव पुरुषादि देवतम अधि यज्ञो हमें बात देता बड़े दे जाने श्रेष्ठ अर्जुन, क्षय भाव अर्थात नाशवान पदार्थ अधिभूत है। पीछे में हमने कल भी किया, तो अधिभूत क्या, जो नाशवान है। पुरुष अर्थात हीन अगर ब्रह्म आदि देव है, और इस देव में अंतर्यामी रूप से मैं ही यज्ञ हूँ विष्णु, जैसे एक ही जल तत्व परमाणु भाप बादल वर्षा की क्रिया बूंदे और ओले और बर्फ के रूप में भिन्न भिन्न देखते हुए भी वास्तव में एक ही है, इसी तरह एक ही परमात्म तत्व ब्रह्म अध्यात्म कर्म अधिभूत अधिदैव और अधियज्ञ के रूप में भिन्न भिन्न देखते हुए भी वास्तव में एक ही है। भगवान कहते हैं, ये दिखेगा तो अलग अलग है, ब्रह्म है, ये विष्णु है, ये ब्रह्मा है, स्थिति को ले है, ये भौतिक है, ये दैविक है, लेकिन असली में कहते एक ही परम पिता परमेश्वर है। जैसे जल को बताया कि जल का क्या रूप है, बूंद भी वही है, बर्फ भी वही है, बारिश भी वही है, बादल भी वही है, भाप भी वही है, परमाणु भी वही है, परमाणु रूप से जल ब्रह्म है, भाप रूप से जल अधियज्ञ है, बादल रूप से जल अधिदैव है, बूंद रूप से जल अध्यात्म है, वर्षा की क्रिया कर्म है, और बर्फ रूप से जल अधिभूत है। परमात्मा के इस स्मृति रूप के लिए गीता में आया है, वासुदेव सर्वम सात तुम्हें और ये पांचवा श्लोक है, अंत काल च मामेव स्मरण मुक्त केवलम याति सामदभावम याति नस्तित संशया। जो मनुष्य अंत काल में भी मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ कर जाता है वह मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। भगवान कहते हैं कि अंत काल में जो मेरा स्मरण करता है वो मुझे प्राप्त हो जाता है। भगवान ने मनुष्य पर विशेष कृपा करके उसे ये छूट दी है कि उसका जीवन कैसा भी हो यदि अंत समय में भी वह मुझे याद कर ले तो मैं उसका कल्याण कर दूंगा। कारण कि भगवान ने आहुति की कृपा से जीव को अपना कल्याण करने के लिए ही मनुष्य शरीर दिया है, क्योंकि मनुष्य शरीर में कल्याण होना है तो भगवान कहते जीवन भर अगर तुमने कुछ किया भी गलत लेकिन अंत में तुम भगवान का नाम ले लेते हो तो फिर तुम मेरे पास पहुंच जाते हैं। वास्तव में सब समय अंत में ही है। देखो व्यक्ति कैसे की गई है, अंत का पता ही नहीं कब आएगा। अब कोरोना रूपी बीमारी जो आई है इससे क्या लग सिद्ध हुआ कि किसी भी मनुष्य का अंत कभी भी हो सकता है। आज तक हम मृत्यु से भी निर्भर हो गए थे मानव जाति, लेकिन अब इस कोरोना ने यह बता दिया कि कब वो किसके भीतर आ जाएगा और कब किसको ले जाएगा, क्योंकि अंत समय किसी भी समय आ सकता है। ऐसा कोई क्षण नहीं है जिस क्षण में अंत समय न आता हो, इसलिए मनुष्य को हर समय भगवान को याद रखना चाहिए। लेकिन अब भगवान ने तो कह दिया कि चाहे तुम कुछ करो अंत में भगवान का नाम आना चाहिए। एक तो इन्होंने इस प्रकार व्याख्या की कि अंत कभी भी हो सकता है, और दूसरा इसके पीछे मैं जो सोचती हूँ साइकोलॉजिकली वो ये है कि जो हमारे प्रैक्टिस में होगा अभ्यास में होगा वही हमें अंत में याद आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम गालियां देते हैं किसी को और अंत में एक एक राम बोल दें। ये उन्हीं से हो सकता है जिन्होंने पहले बहुत सिद्धियां की है, पिछले जन्म में वो सिद्ध थे, इस जन्म में उनको बस एक दफा राम बोला तो उनका काम हो गया। लेकिन हम सब लोग जो हैं जन साधारण जो है स्त्रियाँ माताएं पुरुष, हमें क्या करना चाहिए कि जब भी समय मिले हर क्षण भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। अगला श्लोक है क्षमा यम यम बापे स्मरण भावम त्यजे क्लेबलम तम तमे बैठी कौनते सदा तदभाव भाविता। ये सुंदर श्लोक है, जैसे पहला श्लोक था पांचवा। ये कुंती पुत्र अर्जुन मनुष्य अंत काल में जिस भी भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है वो उस अंत काल के भाव से सदा भावित होता हुआ उसको ही प्राप्त होता है, अर्थात उस योनि में ही चला जाता है। मतलब शरीर जब छोड़ता है जिस भाव में होता है भगवान का नाम लेता है तो भगवान में समा जाता है। अगर वो दूसरे भावों में किसी ने कुत्ता पाल रखा है मत दफा कुत्ते ही याद आ गई है ना, किसी को कोई अपने घर में कोई ऐसा संबंधी है जिसके साथ उसको बहुत प्यार है मत दफा वो ही याद आता है। इस तरह से जो जिस भाव में स्थित होता है मत दफा उस योनि में ही जला जाता है। अगर कोई जैसे मैंने कहा कुत्ता पाला तो कुत्ता ही बन जाएगा जाके, अगर कुछ और याद आती है तो वो ही बन जाएगा। ये सब क्या है, सब क्या मेरा है ये, क्योंकि ये भगवान की वाणी है शाश्वत वाणी है। अच्छा आगे देखिए श्लोक सातवां तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुसृज्यते नेति मनोबुद्धि मामे दशिष्य संशयम्। इसलिए तू सब इसमें मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। देखो कितनी अच्छी बात बताई, मेरा स्मरण भी कर और युद्ध क्या, अर्जुन ने तो मैदान में युद्ध किया, हम लोग आप जाएंगे युद्ध करने। ये संसार में जो हम जीवन व्यतीत करेंगे ये हमारा युद्ध है। संसार के प्रत्येक कर्तव्य को करते हुए हमें भगवान का नाम अवश्य स्मरण करना चाहिए। मुझ में मन लगा और मुझ में बुद्धि भी लगा, इसलिए तो मुझे अवश्य प्राप्त हो जाएगा। श्लोक 8वां, अभ्यास योग इतने तेज अन्य गामिना परमं पोषण दिव्यम या फिर पासानु चिंतन। हे प्रसानंदन, अभ्यास योग से युक्त और अन्य का चिंतन न करने वाले चित्त से परम दिव्य कोष का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ने वाला मनुष्य किसी को प्राप्त हो जाता है। जिसमें और ज्यादा व्याख्या की गई है कि अभ्यास योग, जैसा मैंने पहले कहा कि अंत में नाम का नाम तभी आएगा अगर जीवन में अभ्यास होगा प्रैक्टिस होगी, वरना मत की सफा कहीं याद आएगा। इसलिए सतत हमें क्या करना है, किसी दूसरे का चिंतन नहीं करना है, न पति का, न पत्नी का, न धन का, न कोई अन्य संसारिक चिंतन करना ही नहीं है जीवन भर। और अभ्यास क्या करना है, भगवान के नाम का। और फिर जब शरीर छूटता तो उसमें वही जो हमने अभ्यास किया हुआ है वो याद हो जाता है और हम उसी को प्राप्त हो जाते हैं। अगले श्लोक 9वां, कदम पुराण अनुशासितारम नो ज्ञान समूह समृद्धा सर्वस्य धातारम अत्यंत रूपम आदित्य वर्णम संसार परस्ताप। हे सर्वज्ञ अनादि सत्व शासन करने वाला, शिक्षण से अत्यंत शिक्षण सबका धारण पोषण करने वाला, ज्ञान से अत्यंत परे सूर्य की तरह प्रकाश स्वरूप अर्थात ज्ञान स्वरूप ऐसे अचिंत्य स्वरूप का चिंतन करता है। यहाँ भगवान का रूप बता दिया है ना, वो कैसा है, सर्वज्ञ है, अनादि है, शासन करने वाला है, सूक्ष्म और सबको धारण भी करता है, उनको पालता भी है, जो ज्ञान से बहुत दूर है, सूर्य की तरह प्रकाशमान है। 10वां श्लोक है, ज्ञान काले मनसा चलेन भक्त युक्त योग बलेन चाहे भूगोल मध्य प्राण अवेश्य संयत साकर्म परम पुरुषम इत्यादि दिव्य। भक्ति युक्त मनुष्य जो हमने पिछले श्लोकों में पढ़ा कि जिसने सतत अभ्यास किया है और किसी अन्य का चिंतन न करते हुए भगवान का चिंतन करता है, वह भक्ति युक्त मनुष्य अंत समय में अखिल मन से और योग बल के द्वारा व्यक्ति के मध्य में प्राणों को अच्छी तरह से प्रवेश करके शरीर छोड़ने पर उस परम दिव्य कोष को भी प्राप्त करता है अथवा वो मुक्त हो जाता है। अब मैं आपको एक संस्मरण जो इंग्लिश में लिखा गया है और लिखने वाली है श्वेता बंगलोर से, गोल्डन मोमेंट्स विद द गुरु, कांग्रेचुलेशंस टू वन एंड ऑल ऑन गोल्डन जुबली वर्कशॉप 1 ऑन 10th February 2018 सेलिब्रेटिंग श्री शारदा मां सेवा संघ 4th annual सत्संग टुगेदर डिड आवर यूजुअल मंथली सत्संग द सेलिब्रेशन इन द इंक्लूडिंग द सुंदर काम नोट बाई श्री मां देवी तीर्थित टेम्पल भजन योग टू स्वामी जी। दिस एनुअल डे फॉल्स इन सच ए ग्रेट मंथ एवरी ईयर क्लोज टू महा शिवरात्रि माता जी मां गीता हैज इनॉग्रेटेड दिस फंक्शन हरसेल्फ इन 2014 in Bengaluru. The feel of divinity when doing satsanga is such that it gives the positive vibrations and soothes the inner self. Then the monthly satsang was inaugurated by Mataji, individuals from different cities participated in native people, close religions. Mataji, while addressing everyone, told it, Sangam Haiti, Kulu, Kashmir, and Karnataka. The blessings of Mataji being in Bengaluru is such that we went for a 5-day-long religious trip with Mataji and other devotees from Kulu and Jammu. And devotees' name are Srimati Somalata, Srimati Rajneji, and Madam Chinna. And Jammu. We covered Tibandam, Padmanava, Swami Temple, Kanyakumari, Rameshwaram, and Madurai. Madurai. It was again a great experience in the proof of how Swamiji and Mataji showered me the path of to successfully complete this yatra. The fortune was such that the Kumbh Mela was going on in Rameshwaram. And temple was supposed to be closed till next day, and we all were fenced and called Mataji. Mataji said, please search for Padam Navan Ji, who is a social worker and a saint in Rameshwaram. We had no contact details, but only name and place where the great person stayed. We then into thoughts of how would we ever to find him in such a huge crowd. We just started to visit the temple's gates in evening. By morning, we found a great group of saints walking and talking. We abruptly stopped them and to God grace the person leading that group. I won't even believe Shodhi Bhashi Padam Navanji. And I can never forget the experience. And we had been visiting this supreme and seeing a different world, how he became a day for us to get our darshana done the next day. Soon after the Abhisheka and Bhata spread over all the crowd during the Kumbh Mela that happens after every 14 years. Then I got married in December and my husband Sada Satsanga in my mother's house. Every second Saturday, he had an urge to see the temple. I can never forget how the company of the Guru has helped me in all ups and downs with all the blessings from Swami Maharaj and Mataji. I, with my husband, and opportunity to visit temple after our marriage. The peace we felt in Mataji's lotus feet and in temple is non-explanatory. I pray to Swamiji Maharaj that he keeps bestowing his blessings, kripa on all of us, and always under Mataji's ashirvad, so that all the right path. Satguru mein teri patang. ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਗੀ ਜਾਵਾਂਗੀ ਬਾਬਾ ਦੋ ਹੱਥੋਂ ਚੱਲੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕੱਟੀ ਜਾਵਾਂਗੀ ਸੇਤਾ ਕੋ ਅਗਲਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾ ਸੋਡਾਨੀ ਸੈਨ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਏਵਮ ਸ਼ਾਰਦਾ ਮਾਂ ਸੇਵਾ ਸੰਘ ਕੇ ਸਭੀ ਸਦਸਿਓ ਕੋ ਸਾਧਵਾਣੀ ਕੇ 50ਵੇਂ ਅੰਕ ਕੋ ਹਾਰਦਿਕ ਵਧਾਈ ਮੇ ਹੋ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਸਵਰਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੋਡਾਨੀ ਬਹੁਤ ਸਾਲੋਂ ਸੇ ਯਹਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਹਮਾਰਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭਗਵਤੀ ਦੁਰਗਾ ਕਾ ਭਗਤ ਹੈ ਯਹਾਂ ਇੱਕ ਅਪੂਰਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਤੀ ਹੈ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਮਾਂ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਤੇ ਹੈ ਇੱਕ ਅਲੌਕਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਏਵਮ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਪੂਜਨੀ ਗੀਤਾ ਮਾਂ ਸੁਣੀ ਮੈਂ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਭਗਵਤੀ ਕਾ ਵਾਸ ਹੈ ਉਨਕਾ ਹਮਾਰੇ ਸਿਰ ਪਰ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਕੀ ਅੰਤਿਮ ਇੱਛਾ ਕੁੱਲੂ ਵੈਸ਼ਨੋ ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਆਕਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਕੀ ਥੀ ਪਰ ਅਸਵਸਥਾ ਕੇ ਕਾਰਨ ਹਮ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੇ ਅਬ ਉਨਕੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨਕੇ ਨਿਮਿਤ ਯਹਾਂ 18/7/2011 से 26/7/2011 तक हमने मूल भागवत पाठ कराया। मेरी छोटी पुत्री मोहिनी खैतान व उनके पति श्री विश्वनाथ खैतान बोस्टन निवासी भी कुल्लू आए और भागवत में सम्मिलित हुए। माता जी के हम पर सदैव कृपा बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ प्रभा सुरानी सान फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया। एक और स्मरण छोटा सा स्वामी जी से मेरे प्रथम गए सुभाष चंद्र शारद वाणी पत्रिका के 50वें अंक के उपलक्ष्य में मैं श्रीमान जी कुमार भाई तथा संघ को आदि बधाई देता हूँ। 1963 का दिन मेरे लिए स्वामी जी की कृपा थी। श्री पृथ्वीराज शर्मा मंदिर निवासी के साथ स्वामी जी से मिलने हेतु पहुँचा। उनका बात से लेते हैं उनकी दिव्यता इन सब का वर्णन करना मुझे अत्यंत कठिन है। ईश्वर भक्ति की लो हमारे भीतर प्रज्वलित करना ही शायद उनका उद्देश्य था। हमारे भीतर के बंद कबाड़ों को उन्होंने खोल दिया और हम अंधेरे से प्रकाश की ओर अग्रसर हुए। वे अक्सर कहा करते थे कि माता पिता की सेवा ही नारायण सेवा है, यदि ये निष्काम हो तो सोने पर सुहागा है। सुभाष चंद्र मंदिर। एक और है छोटा सा प्रसंग बीना एवं अनिलसूर अखाड़ा है। श्री स्वामी जी महाराज जी के आशीर्वाद से तथा श्री मां जी के अथक प्रयासों से मां देवी देव द्वारा स्वचालित त्रैमासिक पत्रिका का 50वां अंक प्रकाशित होने जा रहा है। इस शुभ अवसर पर हम संघ को तथा श्री मां जी को हार्दिक बधाई देते हैं। साथ ही साथ ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं कि ये पत्रिका बिना किसी रुकावट के निरंतर प्रकाशित होती रहे तथा हमारा मार्ग दर्शन करती रहे। बीना सूत अनिल सूत एक और भी पढ़ के सुनाई देती हूँ। प्रथम एक वरदान लिखने वाली है संतोष कौन। गुरु ही सत्य है, गुरु केवल संग है, अतः गुरु ही सत्संग है। ऐसा ही वरदान मुझे श्री गीता माँ जी से मिला। एक सत्संग से ही मैं शारदा माँ सेवा संघ से जुड़ी। पहले मैं जम्मू शाखा ऋषि माँ मत सल्ला भान जी चला रही है माँ से आरम्भ किया। मेरी आस्था बढ़ती गई, हर सत्संग में भाग लेने लगी। इसी कारण वर्ष कोई छूट गया होगा। गुरु की स्तुति से ही आरम्भ करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो। ज्ञान मूलम गुरु मूलम पूजा मूलम गुरु कृपा मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। यदि ध्यान करना है तो ध्यान गुरु की आकृति का करना चाहिए। यदि पूजा करनी है तो गुरु के चरणों की करनी चाहिए। गुरु का मंत्र ही बड़ा मंत्र है, मुक्ति गुरु की कृपा से ही मिल सकती है। गुरु के अनुग्रह से शिष्य का मार्गदर्शन होता है। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लिखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। तीर्थ एक फल संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल, कहते करिए विचार। सत्संग से मुझे माँ का प्यार मिला। कितने भाग्यशाली है हम सब, कलयुग में हमें सदगुरु श्री माता जी की छत्ती छाया मिली है। मेरे जम्मू छोड़ कर बेंगलोर जाना पड़ता, परंतु माँ को अरेंज करना सत्संग के लिए केवल विचार करती रही। अब क्या करूँ, कैसे जाऊँ, दिन रात चिंता में रही। ओहो भाग्य मेरा, माता जी का बेंगलोर आना फिर तो सत्संग ही सत्संग था। उनकी कृपा उनकी दृष्टि रही हम पर। मैंने श्री मां जी से अपने ये सत्संग छूटने का दुख प्रकट किया। श्री मां जी दया निदान भक्तों के दुखों को निवारण करने वाली है। उन्होंने सत्संग का वरदान दिया। अपने ही शुभ हाथों से शारदा माँ सेवा संघ बेंगलोर शाखा उद्घाटन 12 फरवरी 2013 को किया और आदेश दिया कि हर महीने के दूसरे शनिवार को सत्संग करते रहना। ऐसी मेरी मनोकामना मेरे गुरुदेव ने पूरी की। इनके आदेश अनुसार सत्संग चलता है और आगे भी चलता रहेगा। जिन सत्संग भी देखना हो राम के कारण सलभन हो सत्संगति मुद मंगल मूला सोई फल सिद्ध सब साधन मूला सत शुद्ध सत्संगति पाई पारस पारस को धात सुभाई अर्थात मनुष्य पर विवेक सत्संग से बढ़ता है। जिन्हें बिना श्री राम जी की कृपा से कि आसानी से प्राप्त नहीं होता है, ऐसे ही उनका सत्संग मिलना चाहिए जिसकी वाणी में अपना आधार हो, जिसके हृदय में हमें शिक्षा मिले, जिसके संग से हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाए। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि श्री मां जी का आशीर्वाद तथा साथ पहले मेरे तथा मेरे परिवार के साथ बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ में आज मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय माता दी।